देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आप पधारे। आज कल तो केवल सबसे मिलना जुलना हुआ। विदुर जी के घर खूब बातचीत हुई, कुंती से भी बात हुई, विदुर जी से भी बात हुई। विदुर जी ने कहा कि आपको आना नहीं चाहिए था, आपको मालूम ही है सर्वज्ञ हो, दुर्योधन आपकी संधि को स्वीकार करने वाला नहीं है, क्यों आए आप? इन मूर्खों के बीच में कोई अच्छी बात कहना शोभा भी नहीं देता। विज्ञ पुरुष हो, समझदार हो तो कुछ कहा भी जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विदुर जी, ये सब मैं जानता हूं, मैं हितकारी बात कहने की एक परंपरा डालने के लिए आया हूं। इतिहास में कोई यह न कह दे कि यदि कृष्ण प्रयत्न किए होते और कृष्ण उनको समझाए होते तो संभवतः इतना बड़ा महाभारत का युद्ध बच सकता था। ये तो होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान जप और अग्निहोत्र से निवृत्त होकर सूर्य के सामने जल दिया, अर्घ दिया और उसके बाद वे अपने वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित हो गए। और इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल के पुत्र शकुनी ने उनके पास जाकर कहा, कृष्ण के पास, महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कौरव महानुभाव सभा में पहुंच गए हैं, अब आपकी बाट जो रहे हैं, सब आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को गौर से देखा। देखो यहीं से ही राजनीति प्रारंभ हो गई। गौर से देखा, सिर को थोड़ा हिलाया और शकुनी की आंख में आंख डालते हुए, ठीक है। इतने में ही शकुनी तो अंदर से घबरा गया। दुर्योधन की ओर भी देखा, आ रहे हैं। इसके पश्चात सारथी ने आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ शुभ्र रथ लाकर खड़ा कर दिया और कहा, महाराज रथ तैयार है। यदुनाथ उस रथ पर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओर से घेर कर चल रहे थे। भगवान के पीछे उन्हीं के रथ में समस्त धर्मों को जानने वाले विदुर जी भी सवार हो गए। दुर्योधन और शकुनी एक दूसरे रथ में बैठकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शकुनी और दुर्योधन दोनों आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे। धीरे धीरे भगवान का रथ राजसभा के द्वार पर आया और उससे उतरकर भगवान बड़ी फुर्ती से सभा के अंदर प्रवेश कर गए। जिस समय श्री कृष्ण विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़कर सभा में पधारे, उस समय में भगवान की दिव्य कांति से समस्त कौरवों को निस्तेज सा कर दिया। उनके आगे आगे दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और वृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सभी अपने स्थान से खड़े हो गए, अभिवादन किया। श्री कृष्ण के लिए राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से सर्वतोभद्र नामक स्वर्णमय सिंहासन रखा हुआ था। उस पर बैठकर श्री श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और दूसरे राजाओं से अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद अपनी बातचीत प्रारंभ कर दी। और भी कई कौरव और राजा लोग सभा में पधारे और कृष्ण का पूजन किया। इस समय श्री कृष्ण ने सभा के भीतर, ध्यान से सुनना, इस समय श्री कृष्ण ने सभा के भीतर अंतरिक्ष में नारद आदि ऋषियों को खड़े देखा, जो केवल कृष्ण को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। भगवान ने कई देर तक उनको देखा। तब उन्होंने धीरे से शांतुनंदन भीष्म से कहा, किसने? भगवान कृष्ण ने। भीष्म जी, इस राजसभा को देखने के लिए आकाश से ऋषि मुनि आए हैं, उनका आसन आदि देकर सत्कार के लिए आप आह्वान कीजिए। उनके बिना बैठे यहां हम लोग बैठे रहे अच्छा नहीं लगेगा। इन शुद्ध चित्त मुनियों की शीघ्र पूजा कीजिए। इतने में ही मुनियों को सभा के द्वार पर आया देख भीष्म जी ने बड़ी शीघ्रता से सेवकों को आसन लाने की आज्ञा दी और वे तुरंत ही आसन ले आए। देखो, पहले तो भगवान को ही दिखाई दिए। भगवान ने कहा ना वो आए, तब वो द्वार से आए। जब ऋषियों ने आसनों पर बैठकर अर्घ्य आदि ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। महामती विदुर जी श्री कृष्ण के सिंहासन से लगे हुए एक मणिमय आसन पर, जिस पर श्वेत मृग चर्म बिछा हुआ था, बैठ गए। राजा लोग एक दूसरे से पर्दे को हटाते हुए कृष्ण का खूब दर्शन कर रहे थे। कृष्ण का उस समय तेज बड़ा देदीप्यमान था। राजा लोग उनका दर्शन करते करते वैसे ही तृप्त नहीं हो रहे थे जैसे कोई अमृत को पीते पीते तृप्त नहीं हुआ करता। उस सभा में सभी का मन कृष्ण में लगा हुआ था। सब ये लोग सोच रहे थे अब कृष्ण क्या कहेंगे, क्या करेंगे। सभी का मन कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए किसी के मुख से कोई भी बात निकल नहीं रही थी। सब उनके रूप माधुरी के अंदर डूबे हुए से थे। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बड़ी गंभीर वाणी में कहा, राजन, मेरा यहां आने का उद्देश्य यह है कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का सम्यक आदर है और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राजसभाओं की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुणों से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो ये उचित नहीं है। यदि कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई असद्व्यवहार होता है तो ये रोकने का काम आपका है। महाराज, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ की ओर से मुंह फेरकर क्रूर पुरुषों का सा आचरण करते हैं। अपने खास भाइयों के साथ इनका अशिष्ट पुरुषों का सा आचरण है तथा चित्त पर लोभ का भूत सवार हो गया है। इन्होंने धर्म की मर्यादा को एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपको मालूम है। इस भयंकर आपत्ति के समय कौरवों को बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। यदि इस समय आपने सद्गुणों की उपेक्षा कर दी तो सारी पृथ्वी चौपट हो जाएगी। यदि आप अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मैं मानता हूं इन दोनों में संधि होनी कठिन तो है पर बहुत बड़ी कठिनता भी नहीं है। इस समय शांति कराना आपके और मेरे हाथ में है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियम में रखूंगा। आपके पुत्रों को अपने बाल बच्चों सहित आपकी आज्ञा में रहना चाहिए। यदि ये आज्ञा में रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। महाराज, आप पांडवों की रक्षा में रहकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलेंगे। हे भरत श्रेष्ठ, जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाल्मीकि, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी और युयुत्सु जैसे वीर हो, उनसे युद्ध करने की किस बुद्धिहीन की हिम्मत हो सकती है? आप एक होकर रहो। कौरव और पांडवों के मिल जाने से आप समस्त लोगों का आधिपत्य प्राप्त कर लोगे तथा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि करने आ जाएंगे। ऐसा होने से आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों से सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पांडवों को ही आगे रखकर इनका पहले के समान आदर करेंगे तो ये सारी पृथ्वी आनंद में डूब जाएगी और आप भी इस पृथ्वी का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। महाराज, युद्ध करने में मुझे बड़ा भारी संहार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों का नाश कराने में आपको कौन सा धर्म दिखाई देता है वो आप जाने। अतः आप इस लोक की रक्षा कीजिए और ऐसा कीजिए जिससे आपको आपकी प्रजा का नाश न हो। यदि आप सत्वगुण को धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जाएगी। महाराज धृतराष्ट्र, पांडु ने आपको प्रणाम कहा है और आपकी प्रसन्नता चाही है। उन्होंने अपनी ओर से आपको प्रार्थना की है कि हमने अपने साथियों सहित आपकी आज्ञा से ही इतनों दिनों तक दुख भोगा है। ये दुख हमने किसी लाचारी से नहीं भोगा है। महाराज, आपने आज्ञा दी, हम वनवास में चले गए। आपने आज्ञा दी, अज्ञातवास का हमने समय निकाल दिया। 13वां वर्ष जन समूह में अज्ञात रूप से बिता दिया। केवल आप ही की तो आज्ञा थी। वनवास की शर्त होने के साथ हमारा यह भी निश्चय था कि हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिता की तरह कृपा करेंगे। हमने उस शर्त को पूरा पालन किया, लेकिन आपकी ओर से ऐसा पिता जैसा व्यवहार हमको नहीं मिल रहा है। अभी भी समय है पिताजी, आप हमारे साथ पितृस्नेह कीजिए। हमें अब अपने राज्य का भाग नहीं जाना चाहिए। आप धर्म और अर्थ का स्वरूप जानते हैं, इसलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा गौरवयुक्त व्यवहार होना चाहिए, आपके साथ हमारा वैसा ही बर्ताव रहा है। इसलिए आप भी हमारे प्रति गुरु का सा आचरण कीजिए। हम लोग यदि मार्ग भ्रष्ट हो रहे हो तो आप हमें ठीक रास्ते पर लाइए और स्वयं भी सन्मार्ग में स्थित हो जाइए। ये संदेश दिया है महाराज। इसके सिवा आपके इन पुत्रों ने इन सभासदों से भी कहलवाया है कि जहां धर्मज्ञ सभासद हो वहां कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। यदि सभासदों के देखते हुए अधर्म से धर्म का और असत्य से सत्य का नाश हो तो उनका भी नाश हो जाता है। इस समय पांडव लोग धर्म पर दृष्टि लगाए चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्म के अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात कही है। राजन, आप पांडवों का राज्य दे दीजिए, इसके सिवा आपसे और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सभा में जो राजा लोग बैठे हैं उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थ का विचार करके मैं सच्ची बात कहूं तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियों को आप मृत्यु के फंदे से छुड़ाइए। महाराज, शांति धारण कीजिए, क्रोध के वश में मत होइए और अपने पुत्र के मोह से आप बाहर निकलिए। पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दिए, ऐसा करके आप अपने पुत्रों सहित आनंद में रहोगे। राजन, इस समय आपने अर्थ को अनर्थ समझ लिया, अनर्थ को अर्थ मान लिया, अधर्म को धर्म मान लिया, धर्म को अधर्म मान लिया। आपकी बुद्धि विवेक से भ्रष्ट हो चुकी है। आपके पुत्रों पर लोभ ने अधिकार जमा रखा है। आप जरा काबू में रखिए अपने आप को। पांडव तो आपकी सेवा के लिए तैयार है और यदि आप चाहें तो वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों में आपको जो अच्छा लगे उस पर आप दृढ़ हो जाइए। वेशमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार स्पष्ट साफ युद्ध के लिए भी बोल दिए, धृतराष्ट्र बहुत घबराने लग गया। वो वहां बैठे बैठे कांपने लग गया, क्योंकि कृष्ण की आवाज में जो जोश था, जो ओस था, धृतराष्ट्र उसको सहन नहीं कर सके। सभी राजा लोग जो ये बात सुन रहे थे वे रोमांचित हो गए, कोई चकित हो गए। वे मनी मन तरह तरह से विचार करने लगे, कृष्ण की बात का कौन क्या जवाब दे सकता है। उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकली, और कृष्ण की बात सुनकर कि वे कृष्ण की ओर ही देखते रहे। सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुए देख, उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी महाराज खड़े हुए और कहने लगे, राजन किस विचार में डूबे हो, कह दो आज इस सभा में अपना मुंह छोड़कर कि मैं धर्म का अनुयायी हूं, पुत्र का अनुयायी नहीं हूं। सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक बात सुनो, और यदि वो तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। सुनो धृतराष्ट्र, पहले दंबोद्भव नाम का एक सार्वभौम राजा हो गया था। वह महारथी सम्राट नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो। इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यंत गर्वोन्मत्त होकर, घमंड में डूबकर संपूर्ण पृथ्वी पर घूमता था और कहता था, आओ कौन मुझसे युद्ध कर सकता है। राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा, ए दंबोद्भव, इस पृथ्वी पर ऐसे दो सत्पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों परास्त किया है, उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह आंख फाड़कर कहने लगा, कौन है वो वीर, उन्होंने कहां जन्म लिया है, वे क्या करते हैं और वे कौन हैं। ब्राह्मणों ने कहा, इतनी आंख निकालने की जरूरत नहीं है, वे दो ऋषि गंधमादन पर्वत पर हैं, एक का नाम नर है, एक का नाम नारायण है, हम मनुष्य लोक में उन्हीं के दर्शन करते हुए आए हैं, तुम्हें यदि युद्ध करना है तो उनके साथ युद्ध करो, गंधमादन पर्वत पर जाओ और उस अवर्णनीय तप के प्रभाव से उनकी शक्ति का दर्शन करो। धृतराष्ट्र, राजा को ये बात सहन नहीं हुई, दंभोद्भव को, वह उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर नरनारायण के पास चला गया, गंधमादन पर्वत पर जाकर उनकी खोज करने लगा। थोड़ी देर में उन दोनों मुनियों को देखा, शांत बैठे हुए, उनके शरीर की शिराएं तक दिखने लगी, शीत घाम वायु को सहने के कारण बहुत दुबले हो गए थे, उनके नसें नसें और हड्डियां हड्डियां दिख रही थी। राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श करके उनसे कुशल क्षेम पूछी। उन मुनियों ने कहा, आओ फल खाओ, बैठो, जल पियो, सत्कार किया और पूछा, आप लोग यहां कैसे आए हो, हमसे आपका क्या काम है। राजा ने कहा, महाराज हमने सुना है आप नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते हैं, आप बहुत बड़े वीर शूरवीर माने गए हैं, हम आपके साथ दोनों के साथ युद्ध करने आए, मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है, कोई मुझे युद्ध करने वाला मिला नहीं है, युद्ध करने से मेरा सत्कार होगा। नरनारायण ने कहा, राजन हम लोग तपस्या में बैठे हैं, तपस्या और क्रोध इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। युद्ध की बात तो बहुत आगे है, हम यह क्रोध भी नहीं कर सकते। कोई हमको कठिन और कुटिल बात कहे तो भी हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। हमको तो यहां शांत भाव से रहना चाहिए। राजन, तुम्हारे अंदर भी शांति का भाव होना चाहिए। पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, दूसरों के साथ जाकर युद्ध करो, हमारे अंदर तुम क्यों क्रोध पैदा करते हो? नर नारायण के ऐसे कहने पर भी युद्धोद्भव ने युद्ध की दंभोद्भव ने युद्ध की लिप्सा को बढ़ाए रखा, शांत नहीं हुई और वो आग्रह करता ही रहा। तब भगवान नर ने एक मुट्ठी सीके लेकर कहा, अच्छा तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो, करो अपनी सेना को तैयार। ये सुनकर दंभोद्भव और उसके सैनिक ने उन पर बड़े बड़े पैने बाणों की वर्षा कर दी। भगवान नर ने एक सींक को अमोघ शस्त्र के रूप में परिणित करके छोड़ा और हे धृतराष्ट्र, कोई आश्चर्य की बात नहीं, उस मुनिवर ने उन सब वीरों के आंख नाक और कान को सींक से भर दिया। सबके कान नाक कान में नाक में चले गए, बाण चला गया। सारे आकाश को सफेद सींकों से भरा देखकर दंभोद्भव उनके चरणों में गिर गया कि महाराज अब रक्षा करो, अब मुझे बचाओ, आप शरणागत वत्सल हो, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। तब नर ने कहा, राजन आगे ऐसा कभी मत करना, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, धर्म का आचरण करो और किसी का भी अपमान मत करो, अपने आप को ही दुनिया में बड़ा मानकर मत चलो, यह भी एक बहुत बड़ा पाप है, अपने से बड़े बहुत है। तुम बुद्धि का आश्रय लो, लोभ छोड़ो, अहंकार शून्य होकर रहो, जितेंद्री क्षमाशील मृदु और शांत स्वभाव के बनो और फिर प्रजा का पालन करो, भविष्य में किसी का अपमान मत करना। दंभोद्भव मुनीश्वरों के चरणों में प्रणाम करके अपने घर लौट आया और फिर उसके बाद उसने अपना जीवन एकदम बदल दिया, धर्मानुकूल व्यवहार करने लगा। इस प्रकार उस समय नर ने बड़ा भारी काम किया था। मैंने इतनी बड़ी कथा इसलिए सुनाई है धृतराष्ट्र, तुमको पता नहीं है वो नर ही अब अर्जुन है। नर अर्जुन है गुरुदेव, मेरी बात पर आपको विश्वास करना चाहिए। जब तक अर्जुन अपने श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर बाण न चढ़ाए तभी तक तुम अपना मान छोड़कर अर्जुन की शरण में चले जाओ। कोई संकोच मत करो। अर्जुन इस समय पांडु का पुत्र तो बाहर से है लेकिन वो साक्षात नर है, जो संपूर्ण जगत के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मों के साक्षी वे नारायण अर्जुन के सखा है और वे सखा तुमसे दूर नहीं है धृतराष्ट्र, वो तुम्हारे पास ही है और उनका नाम वासुदेव कृष्ण है। इसलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए बड़ा कठिन होगा। अर्जुन में अगणित गुण है और श्री कृष्ण तो उससे भी बढ़कर है। कुंती पुत्र अर्जुन के गुणों को तो तुम्हें कई बार बाहर से तो परिचय मिल ही चुका है लेकिन अंदर का परिचय आज मैंने तुम्हें दिया है। वो नर कृष्ण नारायण, इन दोनों को तुम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ और वीर समझो। हम ऋषि तुम्हारे बिना बुलाए यहां क्यों आए? केवल इसी बात को जताने के लिए आए हैं कि समय पर तुम यह न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं था। यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और उसमें कोई संदेह न होता हो तो सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों से संधि कर लो। परशुराम का भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी वहां आ गए और वे भी कहने लगे, दुर्योधन, लोक पितामह ब्रह्मा और नर नारायण ये अक्षय और अविनाशी हैं। अदिति के पुत्रों में केवल विष्णु ही सनातन, अजेय, अविनाशी, नित्य और सबके ईश्वर है। उनके सिवा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह, तारे ये सभी विनाश के कारण उपस्थित होने पर नष्ट हो जाया करते हैं। जब संसार में प्रलय होता है ये सभी पदार्थ तीनों लोकों को त्याग कर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होने पर फिर ये उत्पन्न हो जाते हैं। इस बात पर तुम विचार करो और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ संधि करो जिससे कौरव और पांडव मिलकर पृथ्वी का पालन कर सके। दुर्योधन, तुम ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, ऐसा भी मत समझो कि मेरे पास बहुत बड़े बलवान सहायक हैं। संसार में बलवानों की अपेक्षा दूसरे बलि पुरुष दिखाई देते हैं। सच्चे शूरवीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं आती है। पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान शूरवीर और पराक्रमी हैं। पांडवों के पास जो सेना है वो नाम मात्र की है, उनका स्वयं का बल काम आ रहा है। वे स्वयं वायु, इंद्र, धर्म और दोनों अश्विनी कुमार हैं। इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते। तुम्हें मालूम है जैसे अभी परशुराम जी ने कहा, नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण, ऐसे ही भीमसेन वायु हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, नकुल और सहदेव ये दोनों अश्विनी कुमार हैं। कहो इनसे तुम युद्ध करोगे? इसलिए सब विरोध छोड़कर संधि कर लो तो मैं इन तीर्थ स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा अपने कुल की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। ये महातपस्वी देवर्षि नारद जी विराजमान, हम लोगों की बात पर विश्वास न हो तो नारद जी पर तो विश्वास करो। ये भगवान विष्णु के महात्म्य को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और ये चक्र गदाधर विष्णु ही यहां कृष्ण रूप में विद्यमान है। दुर्योधन, तुम इनके विषय में कोई संदेह मत करो। महर्षि कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांस लेने लगा, ऐसे उसकी त्योरी चढ़ गई तथा कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से इन ऋषियों की बातों की हंसी उड़ाने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। ये नर और नारायण, ये वायु, इंद्र, अश्विनी कुमार, ओहो, बड़े बड़े आ गए यहां हमारे यहां, जैसे हम कुछ है ही नहीं। उस दुष्ट ने कर्ण के कथन पर इतना परिहास किया। कर्ण ने उसको देखा और चुप होकर वे अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन कहने लगा, महर्षि, जो कुछ होने वाला है वो मेरी गति होकर के ही रहेगी। आप लोग मुझे यहां डराने धमकाने के लिए आए हो? क्या आप लोग पांडवों के गुलाम हो जो उनके सिखाए आकर संधि की बात करना जान कह रहे हो, उनमें उनका बल भी दिखा रहे हो और संधि की भी बात कर रहे हो? यदि उनमें बल है तो आप संधि की बात करते ही क्यों हैं? जो ईश्वर ने रचा है वही होगा। जो मैं कर रहा हूं ईश्वर का रचा हुआ कर रहा हूं, उसमें आपके कथन से क्या होने वाला है? ईश्वर ने यदि मुझसे ऐसा ही करवाना लिखा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय पितामह भीष्म ने अपने सिर पर हाथ रख करके कहा, इस मूर्ख का क्या करें? भगवान वेदव्यास, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को कई प्रकार से समझाया। नारद जी ने जो बात कही वे सुनिए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, संसार में सूर्योदय श्रोता मिलना कठिन है। हित की बात कहने वाला सूर्य भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ नहीं छोड़ते वहां भी सच्चा मित्र संग सदा साथ रहने वाला है, उसकी हित भरी बातों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हट का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आप जैसा कह रहे हैं वो बात ठीक ही तो है, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन आदि के साथ पांडु पुत्रों का प्रेम हो जाए, परंतु करूं क्या, मैं भी विवश हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। सब लोगों ने आश्चर्य से धृतराष्ट्र की ओर देखा, मानो ये आश्चर्य कर रहे हैं राजा होकर पिता होकर कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ये कैसे बोलते हैं। इसके बाद वे कृष्ण से कहने लगे, कौन धृतराष्ट्र, केशव आपने जो कुछ कहा है वो सब प्रकार सुखप्रद सदगति देने वाला धर्मानुकूल न्याय संगत है, किंतु भीष्म पिता में झिड़क गए, किंतु क्या होता है राजन, किंतु भी क्या है, जो बात न्याय संगत मानते हो धर्मानुकूल मानते हो उसको स्वीकार करने में किंतु क्यों लगाया। किंतु केशव मैं स्वाधीन नहीं हूं, मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, न शास्त्र का अनुसरण करता है, मैं क्या करूं। आप कब किसी प्रकार उसे समझाओ, वह गांधारी विदुर जी तथा भीष्म आदि जो हमारे अन्य हितेशी हैं, उनकी बात पर भी ये ध्यान नहीं देता है, आप स्वयं इसको समझाओ, ये बड़ा पाप बुद्धि है, क्रूर है, दुरात्मा है, कैसे समझावे। यदि इसने आपकी बात मान ली होती तो आज सभा के अंदर अब मैं इतनी बात नहीं सुन सकता था, आपके हाथ से अपने सुहृदों का आप बड़ा भारी उपकार करेंगे, माधव आप किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। बड़ा आश्चर्य किया, पुत्र तुम्हारा, पक्ष तुम्हारा, समझाऊं मैं। फिर भी भरी सभा में जब राजा धृतराष्ट्र ने बात कही, तब वे धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण मधुरवाणी में दुर्योधन से कहने लगे, कुरुनंदन मेरी बात सुनो, इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है दुर्योधन, इसलिए तुम्हें अपने कुल को आगे शुभ कर्म के द्वारा बढ़ाना ही चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा होते हैं तथा जिनका चित्त बड़ा दूषित होता है, जो बड़े निर्लज्ज होते हैं। तुम जो इस प्रकार का हट करते हो और ये जो तुम्हारे अंदर युद्ध की प्यास जगी है और तुम अधर्म के अंदर जा रहे हो, जरा इसके परिणाम पर विचार किया दुर्योधन, उससे बड़ा अनिष्ट होगा, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न वो सफल ही हो सकता है। इस अनर्थ को त्याग देने पर तुम अपना तथा अपने भाई सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अयश को प्राप्ति करने वाला काम करना चाहते हो, इस पाप से तुम छूट जाओगे। देखो दुर्योधन, निष्पक्ष होकर विचार करो, ये पांडव लोग कितने बुद्धिमान, कितने शूरवीर, कितने उत्साही, कितने आत्मज्ञ और कितने लोगों की बात सुनते हैं। इन्होंने 12 वर्ष की वनवास में कितना कितना ऋषि मुनियों का बैठ के सत्संग किया है, और जगह जगह जा जाकर उन्होंने यही पूछा है कि हे ऋषिवर, हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, कहीं हम अधर्म में तो नहीं है। ऐसा इन्होंने प्रत्येक ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया है। दुर्योधन तुम्हारे यहां तो बड़ा सौभाग्य है, पितामह भीष्म तुम्हारे घर में, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, कृपाचार्य जैसे आचार्य, परशुराम जी महाराज पधारे, नारद जी पधारे, स्वतः पधारे हैं, जरा इनकी बात को तुम आदरपूर्वक नहीं सुनना चाहोगे, इसी में तुम्हारा हित है। तुम अभी पांडवों के साथ संधि कर लो और संधि करने के बाद अपने चित्त में से वैमनस्य हटाओ और अपने पूर्वजों के जो गुण है उन गुणों का संग्रह करो, पितामह भीष्म के चरणों में बैठकर उपदेश लो, विदुर के चरणों में बैठकर सन्मार्ग की नीतियां सीखो, कृपाचार्य के पास बैठकर शास्त्र की बातें सुनो। द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखो। अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंशति और तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधव और जो तुम्हारे भाई बंधु हैं उन सबको भी ये संधि प्रिय लग रही है। तुम एक संधि को टाल करके क्यों अपयश के भागी बनते हो? तुम में लज्जा भी है, शास्त्र ज्ञान भी है, तुम्हारे में और भी कई गुण है, अतः तुम्हें माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। एक बार मैं रोकता हूं, ये बताता हूं, किसी आदमी को समझाना हो तो उसके अंदर कमियां बता करके उसको नहीं समझाना चाहिए, उसके अंदर उसकी विशेषता बताकर फिर उसमें कोई बात हो तो बतानी चाहिए। देखो भगवान ने कैसी बात कही, तुम्हारे में लज्जा भी है, तुम्हारे में शास्त्र ज्ञान भी है, तुम्हारे में अक्रूरता भी है। है क्या ये? है नहीं। लेकिन अब क्या भगवान झूठ बोल गए? झूठ नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें गुण न हो, क्योंकि परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें विशेषता तो है ही। तो अगले की विशेषता बताते हुए उसमें कोई कमी हो तो बताओ। अतः तुम्हें माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। पिता जो शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। मनुष्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख याद आती है। तुम्हारे पिता को तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम देता है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। बताओ इसमें तुम्हारा नुकसान क्या होने वाला है? जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं मानता उस दीर्घ सूत्री का कोई काम पूरा नहीं होता, कोरा पश्चाताप ही उसके पल्ले रहता है। किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़ पहले उसी का आचरण करता है वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है वह बड़ा भारी विपत्ति में पड़ जाता है, फिर उसे निकलने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। दुर्योधन, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपटता का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव रखा है। मैं उनसे बराबर मिलता रहता हूं। धर्मराज, युधिष्ठिर वगैरह सब तुम्हें प्रेम से चाहते हैं, तुम्हें भी उनके प्रति प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे खास भाई हैं, तुम्हें उन पर रोष नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराने वाला हो। यदि उससे इन तीनों की सिद्धि की संभावना न होती हो तो वे धर्म और अर्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम ये तीनों अलग अलग हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं वो अर्थ को प्रधान देते हैं, और मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे कलह के कारणभूत काम के गुलाम बने रहते हैं। किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ता है वह दूषित उपायों से अर्थ और काम की प्राप्ति में वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और काम के लिए उत्सुक है उसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण मानते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है वह कुल्हाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे नीचा दिखाने में इच्छा न है, मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा न हो उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट न करें। इस प्रकार उसकी बुद्धि लोभ से दूषित न हो उसी का मन कल्याण साधन में लगता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता, किंतु क्रोध के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपना हित अहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेद में बड़े बड़े प्रमाण सिद्ध है उनसे यह गिर जाता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा बताओ दुर्योधन, तुमको पांडवों से युद्ध करने के लिए कई लोगों को तो अपनाना ही पड़ेगा ना? तुम जिन जिन को अपना मित्र बनाओगे उनकी तुलना पांडुओं से करके देखो कि मैं इनसे प्रेम कर रहा हूं पांडुओं के विरोध में, तो इनके अंदर क्या विशेषता है, पांडुओं में क्या दुर्गुण है, तो तुम्हें मालूम लगेगा कि पांडुओं के गुणों के सामने इनमें कुछ भी नहीं है। तुम जो पांडुओं की ओर से मुंह मोड़कर दूसरों के अंदर गुण देखकर उनसे रक्षा की आशा करते हो, तुम्हारी भूल है। दुशासन, कर्ण, शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंपकर तुम पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो? ये तुमको पृथ्वी का शासन दिला देंगे? याद रखो, ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति ये नहीं दिला सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं है। तुम्हें साथ में रखकर ये सब पांडवों की टक्कर नहीं ले सकते। तुम्हारे पास कितनी सेना है, वो सारी सेना अकेला भीमसेन मसल मसल करके नष्ट कर सकता है। भीमसेन के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं। मैं तो भरी सभा में तुम्हें कहता हूं, ये बैठे भीष्म, ये रहे द्रोणाचार्य, ये रहा कर्ण, ये रहे कृपाचार्य, ये भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और ये रहा जयद्रथ, ये सब मिलकर के भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। पूछ लेना इनसे अकेले में। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना समस्त देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्यों के किसी के भी बस की बात नहीं है। मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं दुर्योधन, युद्ध में मत लगाओ। तुम ही उन सब राजाओं से ऐसा कोई वीर दिखाओ जो अर्जुन का सामना कर सके। तुम तो गए थे विराट नगर के यहां, अर्जुन ने सबको तुमको धूल चटा चटा करके भेज दिया था। क्या वहां पितामह भीष्म नहीं थे? क्या वहां द्रोणाचार्य नहीं थे? क्या वहां कर्ण नहीं था? जो जो तुम्हारे चाहते वीर हैं उनमें कौन वहां नहीं था और कौन अर्जुन के सामने टिक सका? उस अजय विजयी वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो क्या? फिर जब मैं भी उनके साथ हूं तो फिर बताओ कौन उसका बिगाड़ कर सकता है? अपने मुकाबले में आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए कोई ललकार सके मेरे सामने? असंभव। जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है वह तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है। कौन? अर्जुन। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बंधु, बांधव, संबंधियों की और गंभीरता से देखो दुर्योधन, ये बिचारे यूं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी एक कुबुद्धि से कितनों का नाश हो जाएगा। कौरवों का बीज रहने दो दुर्योधन, इस वंश का पराभव मत करो। अपने को कुलघाती मत बनाओ, अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को स्थापित करेंगे। जरा उनसे संधि करके देखो तो सही। बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राज लक्ष्मी का इस प्रकार तिरस्कार मत करो दुर्योधन। और पांडवों को आधा राज्य देकर ये महान ऐश्वर्य और बहुत बड़ा यश भी प्राप्त करो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे और अपने हितेशों की बात मानोगे तो चिरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक रहोगे। कृष्ण का ये भाषण सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है मैं एक एक अक्षर अक्षर से उनके साथ सहमत हूं। तुम अब भी मान जाओ, व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो। यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी भी हित नहीं हो सकता। न तुम सुखी पाओगे और न ही तुमको सदगति मिलने वाली है। केशव ने जो कुछ कहा है वो धर्म और अर्थ के अनुकूल है, तुम उसे स्वीकार कर लो। व्यर्थ प्रजा का संहार मत करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे मंत्री, पुत्र, बंधु बांधवों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। भरत नंदन, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलग्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी मत बनाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर कहा, दुर्योधन, श्री कृष्ण और भीष्म जी जैसे बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ, बहुश्रुत महापुरुषों की वाणी का अपमान करने का फल तुमको भोगना न पड़े, इस बात को तुम अस्वीकार करो और कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं उनको मैं जानता हूं, उनके बल को भी जानता हूं, उनकी प्रकृति को भी जानता हूं। तुम संग्राम में अपने पांडवों के सामने टिक नहीं सकोगे। यह बैर विरोध का घंटा अपने गले में डालकर तुम यूं ही मर जाओगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों को प्राणों के संकट में मत डालो। जिस पक्ष में कृष्ण और अर्जुन होंगे उसी संसार में कोई नहीं जीत सकता। यदि तुम अपने हितेशियों की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। एक तरफ तुम सोचते हो कि हमारे पक्ष में भीष्म है, हमारे पक्ष में हमारे गुरुदेव आचार्य द्रोण है, द्रोणाचार्य कह रहे हैं, परंतु हमारा विजय, हमारा शस्त्र कब काम आता? जब तुम हमारी सलाह मानते, हमारी आज्ञा में रहते, तब तो हमारा बल तुम्हारे काम आता है। हम युद्ध तो कर सकते हैं लेकिन तुम्हें विजय दिलाने की कोई किसी प्रकार की आशा की बात नहीं कह सकते। कितनी बढ़िया बात परशुराम जी ने कही, नारद जी ने कही। तुम एक अपने आप को इतना क्या बुद्धिमान मानते हो, हम सबको मूर्ख मानते हो और हमारी सहायता लेकर विजय भी होना चाहते हो। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है वो आज भरी सभा में रहस्योद्घाटन करके तुम्हें भावी पराजय की बात पहले ही सुना दी है। तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से होता क्या है, तुम जरा ध्यान दो तब ना। हमने तो हमारी बात कह दी बाबा, अब तुम जानो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। विदुर जी बोले, दुर्योधन, तुम्हारे लिए हमें कोई चिंता नहीं, तुम चाहे मरो चाहे ठहरो, कुछ भी करो, तुम्हारे लिए क्या चिंता करूंगा। मुझे चिंता है तुम्हारे मां बाप की। तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मां बाप की क्या दशा होगी, इनको देखकर शोक होता है, तुम्हारे मृत्यु के शोक में डूबे रहेंगे। तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सुरीदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर बिचारे ये भटकते रहेंगे। बस इस बात का मुझे कष्ट हो रहा है। अंत में राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, तुम कृष्ण की बात मान लो, वे सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण करते हैं, उस पर तुम ध्यान दो, उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्यकर्मा श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आज यदि कृष्ण के मन को तुम स्वीकार कर लोगे, मन को जीत लोगे, तो इनका मन सदा हमारे साथ रहेगा। आज पांडव इनके मन के अनुसार चलते हैं तो ये पांडवों के पक्ष से हमको यहाँ कितनी बढ़िया बात बताने के लिए आए हैं। बेटा, तुम जरा हमारी बात पर ध्यान दो, तुम इसे हाथ से मत जाने दो, ये बड़ा अच्छा मौका है, कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम सब बड़े प्रेम से राज्य और सुख भोगो और तुम्हारा पतन न हो। बेटा, कुछ आगे तुम ठीक ढंग से विचार तो करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माने जन्मेजय जी से, राजन, धृतराष्ट्र अंदर से अभी भी दुर्योधन से कटा हुआ नहीं था। यदि उसका मन दुर्योधन से हट गया होता तो वो उस समय फटकार करके दुर्योधन को निकाल भी सकते थे, कह सकते थे कि दुर्योधन, यदि तुम्हारे हृदय में कुरुवंश का स्थान नहीं है तो तुम्हारे प्रति मेरे मन में भी कोई स्थान नहीं है। पर इतना बिचारा वो बोल